الیہ مرجعکم جميعا, اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے تمہارا. وعد اللہ حقا, اللہ کا یہ وعدہ ہے جو سچا ہے کہ لوٹنا ہے, یہ سچائی ہے. اس جگہ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بقا ہو, سب فانی ہے. اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ مجھے واپس جانا ہے, اور واپس اللہ کی طرف جانا ہے. مرجعکم جميعا الیہ, ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی, وہ اللہ, ان ربکم اللہ, اس طرف جا رہی ہے, کسی اور کی طرف نہیں واپس جانا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا. اور اس وعدے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, اسی نے پیدا کیا پہلی دفعہ, ابتدا کی پیدائش کی, وہ دوبارہ لوٹا دے گا. دوبارہ لوٹانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اور کس لیے وہ ایسا کرے گا, کیوں اس کی ضرورت ہے, کیوں لوٹنے کی ضرورت ہے, کیوں ایک دن ضرورت ہے کہ کھڑے ہوں اس کے سامنے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, اس لیے تاکہ وہ جزا دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے انصاف کے ساتھ. اور کس لیے وہ کرے گا یہ دن, اس دن کو وہ کیوں لے کر آئے گا؟ والذین کفروا, اور ان کو بھی جزا دے. جزا عربک میں نا اچھے اور برے دونوں بدلوں کے لیے آتا ہے. اور جنہوں نے کفر کیا, لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, تاکہ وہ جو جنہوں نے کفر کیا ان کو حمیم کھولتے ہوئے پانی کا پینا اور دردناک عذاب دے اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا. یہ مقصد ہے قیامت کے دن کے آنے کا, اس لیے کہ اس دنیا میں کبھی بھی انصاف نہیں ہو سکتا. اول تو آپ دیکھیں جس کے ہاتھ جتنے لمبے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بچ جاتا ہے, ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگوں کا وہ مجرم ہے, چھپے ہی رہتے ہیں, وہ پکڑے ہی نہیں جاتے. اور یہ تو ان مجرموں کی باتیں ہیں نا کہ جو سب کے سامنے کوئی جرم ہوا اور ثابت ہو گیا. کئی تو ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے, کسی کو بھی نہیں پتا اس جرم کا کرنے والا کون ہے, لوگوں کو دھوکے دینے والا کون ہے, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنے والا کون ہے. آج تو بہت ہی زیادہ یہ دور ڈسیپشن کا دور ہے, دھوکے کا دور ہے. جو جھوٹا ہے وہ سچا بنا ہوا ہے, جو سچا ہے وہ جھوٹا بنا ہوا ہے, جو بے ایمان ہے وہ ایماندار اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہے, جو ایماندار ہے وہ اس کو لوگ بے ایمان سمجھتے ہیں. تو یعنی یہ ایسا دور ہے, اس میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا. مظلوم آپ دیکھیں سسکیاں بھر بھر کے بعض دفعہ مر جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. اور جو بڑے بڑے مجرم ہیں, جو بڑے ناموں والے یا بڑی شخصیات یا بڑے پیسوں والے ہوتے ہیں, وہ کیسے صاف ہی نکل جاتے ہیں. اور بعض دفعہ کئی مظلوموں کو انصاف ملتا بھی ہے تو ایسے بڑھاپے میں جا کے کہ اب اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ٹھیک ہے, جتنا ڈیلے ہو گیا تو سمجھ جائے گا کیا انصاف ہے وہ. پھر اور پھر کسی نے 100 کو قتل کیا, اس کو ایک دفعہ اگر قتل کی سزا, موت کی سزا دے بھی دی تو یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ جو ایمان لا کے صالح عمل کرنے والے تھے, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اللہ تعالیٰ کے لیے, انہوں نے وہ قربانیاں دی, اپنے رشتوں کو چھوڑا, لوگوں سے باتیں سنی, اپنی جابس کو چھوڑا, گیو اپ کیا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, ان کی کوئی سنوائی ہے؟ اب ہم دیکھیں, ایک ہمارا نا منہ سے ایک یوزول ایک کلمہ جو نکلتا ہے نا, وہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نکلتا ہے نا, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو مرضی کر لے, جو مرضی جو کرتا جا رہا ہے. نہیں, پوچھنے والا کوئی ہے, لیکن اس نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے, کیونکہ اس نے ایک دن رکھا ہے جس دن اس نے پھر پوچھنا. تو یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی کرتے جا رہے ہو وہ کہیں غائب ہی ہو رہا ہے. نہیں, کوئی ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں, تمہارا ریکارڈ بھی بن رہا ہے, کوئی ہیں جو دیکھ بھی رہا ہے, جو پوچھے گا بھی ایک ایک بات کا. تو اس انصاف کا جو وہ منصف ہے, وہ انصاف کرنے والا نا, تو اس انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو کہ یہ دنیا میں جس نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے. یہ اس کے انصاف کا تقاضا تھا. اللہ اکبر. اور اس کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر آج کوئی जा रहा है, कोई कोई मतलब किसी जगह से छूट जाता है साफ ही, और उसका कोई या पता ही नहीं चलता किसी का, तो पता नहीं इसी तरह होगा, कौन इसने पूछना है जी, कहाँ इंसाफ है जी, कौन पूछने वाला है जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि अल्लाह ताला पूछेगा, और जब उसने पूछना है ना तो बड़ी अच्छी तरह पूछेगा। तो ये मकसद है कियामत का। आप देखेंगे कई लोग रिवर्टेड होते हैं, वो कितनी कुर्बानी देते हैं, कितनी ज्यादा कुर्बानी देते हैं कि जो शायद मुसलमान जो बॉर्न है वो सोच भी नहीं सकते उसका। और फिर वो सारी जिंदगी अपने खानदान वालों की तरफ से सफर करते हैं या और कई चीजों में सफर करते हैं, यहां पे तो उसका कुछ भी उनको नहीं मिल रहा, तो क्या एक दिन होना नहीं चाहिए? इसी तरह एक कोई अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करने के लिए बहुत बातें सुनता है लोगों से, या बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बड़े टॉर्चर बर्दाश्त किए, जिन्होंने अपनी जानें तक दे दी दीन की खातिर, इस कलमाए हक की खातिर, क्या उनका कोई नहीं पूछने वाला होना चाहिए? तो इंसान की फितरत भी कहती है कि नहीं, एक होना चाहिए जो दिन होना चाहिए जिसमें सबका पूछा जाए। ये तौहीद आखर जो अकीदा आखरत है ना, ये अकीदा आखरत भी इंसान के अपने अंदर है, उसको लॉजिकल लगता है ये, ठीक है। और अकीदा तौहीद में भी वाकई इंसान को पता चलता है नहीं, वाकई ये खुदा है और इबादत फिर वाकई उसी की होनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो अकल से भी बियॉन्ड है, कोई समझ ही नहीं आने वाली, ये क्या, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। तो ये है मकसद, हुवल्लज़ी जअला अश्शम्स ज़ियाअ वल्क़मरा नूरा। अच्छा, अब तुम में अल्लाह ताला की पहचान नहीं होती ना, एक और तारुफ उस रब का ये है जिसने, अब देखें ये रबूबियत, तौहीद रबूबियत से तौहीद उलूहियत को साबित किया जा रहा है हर जगह पे, हर जगह पे इन द एंड कंक्लूजन यही है, वो वाला वो रब, वो जिसने ये पैदा किया, जिसने ये किया, जिस उसकी इबादत करो ना, तो इससे असल में आपको उसी तरफ लाया जाता है कि अपने मर्जियां, अपने तरीके, अपने अकीदे, अपनी ख्वाहिशात, जो भी किसी ने अल्लाह ताला के हुक्मों के अलावा या उसके बताए हुए तरीके के अलावा किसी ने जो भी ऐसे खुद साख्ता कोई चीजें बनाई हुई हैं, या जैसा जो उनकी रस्म रिवाज है या जो उनकी कौम जिस तरीके पे है उस पे चल रहे हैं, तो नहीं, वो सब छोड़ के फाबुदू, इंसान की अकल को अपील करती है ये बात कि छोड़ो सारी बातें कि फलां ने ये कहा, हमारे तो बड़े ये करते थे, हमारे तो फलाने ने ये हमें बताया था, हमारा तो जो जो हमारे चर्च में है वो ये बताते हैं, जो हमारे मंदिर में है वो ये बताता है, जो हमने हमेशा से सुना है वो ये, इस सब को छोड़ो, इतने लोग ये कर रहे हैं तो क्या वो सब पागल है, इस सब को भी छोड़ो, तुम ये आयतें पढ़ो और बताओ। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनाया सूरज को, दिया के अंदर रोशनी भी होती है और इसमें तपिश भी है, हरारत भी है, ठीक है, हीट भी है, और कमर को नूर बनाया, उसके अंदर भी रोशनी है लेकिन उसमें ठंडक है। मैंने आपको जैसे बताया कि इनके टेम्परेचर्स कितने कितने हैं, इनके कोर का टेम्परेचर, इनके ऊपर का टेम्परेचर अगर आप पढ़े ना, जमीन के मुकाबले में तो सूरज ही 100 गुना बड़ा है, यानी कितनी मिलियंस, एक मिलियन यानी 10 लाख जमीनों को आप जमा करेंगे तो फिर एक सूरज बनता है। आप अपनी जमीन को ही बहुत बड़ा समझते हैं, देखें कितना बड़ा है ये सूरज, और सूरज तो कुछ भी नहीं और इतने सितारे सैारे हैं। और देखें ये सिर्फ ये नहीं कि बस सूरज उसने बना दिया, एक बॉल खड़ा कर दिया और वो रोशनी दे रहा है, बल्कि सूरज और चांद बनाए और वक़द्दरहु मनाज़िला, और उनकी मंजिलें मुकर्र की, लितालमु आदत सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती कर सको और हिसाब कर रख सको। आप देखें टाइम जो है दिन का, ये आप सूरज के जरिए डिटरमिन करते हैं कि अभी सुबह है, अभी दोपहर है, अभी शाम हो गई, यानी दिन कितना अभी तक मुकम्मल हो गया, कितना रहता है, आपको सूरज के जरिए पता चलता है। अच्छा, जिस दिन अंधेरा हो जाए, बिल्कुल ऐसे बादल आ जाए, पता ही नहीं चलता, तो ये टाइम का भी अंदाजा, वो तो अब हमारे पास घड़ियां हैं तो हम कुछ ना कुछ उसे करते हैं, लेकिन अदरवाइज टाइम का अंदाजा सूरज के जरिए होता, हमारी नमाजों का हिसाब सूरज के साथ है, ठीक है, सूरज ढल गया, सूरज गुरूब हो गया, सूरज निकल आया, तो इस तरह से। और जो चांद है इससे तारीखें हैं, महीने हैं, महीनों की गिनती है, सालों की गिनती है, और इसमें बड़ी हिकमतें हैं। अभी हमारे पास चूंकि टाइम नहीं, हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है, आज का जो लेसन है ना इसमें बहुत कुछ है, तो इंशाल्लाह फिर कभी आएगा तो मैं दोबारा इसकी डिटेल के अंदर जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इसको, ये बात को समझ लें कि ये भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिनके जरिए इंसान ना सिर्फ रोशनी और जैसे सूरज है हीट है उसके जरिए लेता है और दिन का अपना अपना स्केड्यूल करता है, चांद भी इसी तरह वो भी रात में एक चमकने वाला और ठंडक देता है, और इसके अंदर भी इसके जरिए भी तारीखों का तायुन किया जाता है, हिसाब किताब रखा जाता है। तो ये हमें एहसास दिला रहे हैं, सूरज और चांद को तो सभी देख रहे हो ना, तो तुम इससे नहीं सीखते हो, सूरज और चांद खुद बता रहे हैं कि हमारा कोई चलाने वाला है। आप देखें इसका बैलेंस, अगर आप इसको कभी स्टडी करके देखें तो कितना जबरदस्त डिस्टेंस का वो है, एक्यूरेट है कि सूरज इतने फासले पर है। साइंसदान कहते हैं अगर ये थोड़ा सा करीब होता ना तो जला देता हर चीज को जो जमीन पे, और थोड़ा दूर होता तो जमीन फ्रीज हो जाती। तो कौन है जिसने इस तरह से इतनी एक प्रिसीजन के साथ इतना इतना फासला होना चाहिए जिससे जमीन पे लाइफ मुमकिन है, किसने रखा? 93 मिलियन माइल्स दूर है सूरज हमसे, किसने ये फासला नाप के रखा? और वो भी रोटेट कर रहा है, जमीन भी रोटेट कर रही है ताकि हर तरफ सूरज की रोशनी आए। 8 मिनट में पहुंचती है सूरज की ये रोशनी और हरारत हम तक, इतनी दूर है ये। तो ये कौन है करने वाला है? और दूसरे सितारों के मुकाबले में इतना छोटा है ये, और सितारे इससे इतने बड़े बड़े हैं, लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं इससे, तो किसने इसको हमारे लिए रखा? मा खलक अल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक। देखिए ना वही वाली बात है ना कि वो जो अकल वाले हैं पहले भी आ रहे हैं, इन फी खल समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल उलिल अलबाब, सूरह आले इमरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के बाद उठते तो आखिरी की आयतें पढ़ते थे ना, तो उनमें स्टार्ट ही इससे है कि ये जमीन आसमान में, ये सब दिन और रात के आने जाने में, ये सब में निशानियां हैं, लेकिन अकल वालों के लिए, बाकी तो देख के तो परवाह भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मा खलक अल्लाह ज़ालिका इल्ला बिल हक, ये अल्लाह ने ऐसे ही नहीं पैदा किया, ये हक के साथ ही ऐसे ही नहीं है। अब हम कितनी वेकेशंस में जाते हैं, कितने सीनिक चीजों को देखते हैं, बड़ी खूबसूरती, और फिर वाह वाह करके बस आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया हक के साथ, हक मीन्स वॉट? हक का मतलब है सच्चाई तो है ही, हक का मतलब है विद पर्पस, बा मकसद पैदा किया। ऐसे ही नहीं कि जैसे वो उन्होंने बना लिया, एक मजहब वालों ने कहा कि भाई वो ये तो खेल के तौर पर बना लिया, खेल के तौर पे बनाया है, जो भी खुदा है उसने खेला और उसने ये चीजें बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है, बा मकसद, उसकी हर चीज में मकसद है कोई। और दूसरा इसका माना, दूसरा भी इसका माना आप लिखें आज, क्योंकि ये भी बड़ा जबरदस्त माना है कि हक वो चीज होती है जिसको अपने आप को साबित करने के लिए कोई खारजी सबूत की जरूरत नहीं होती, कोई एक्सटर्नल कोई उसको प्रूफ नहीं चाहिए होता, वो खुद अपने आप को साबित कर रही थी। जैसे कुरान हक है ना, इसको साबित करने के लिए आपको कोई दलीलें लाने की जरूरत नहीं, उस जिस जो जो जिसके सामने आपने साबित करना सो कहें कुरान पढ़ लो, ये खुद अपने आप को साबित करेगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं, उनको साबित करने के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप उनको कहें कि आप खुद उनकी जिंदगी को पढ़ें, जब वो उनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो खुद वो मुंह बोलता सबूत जिसको कहते हैं, वो जिंदगी खुद साबित करेगी कि ये एक नबी की जिंदगी है। तो लिहाजा जो कोई जानना चाहता है ना, जो कोई अपने सारे बायस पीछे करके और फिर वाकई आंखें खोल के देखे तो उसको समझ आ जाती है। तो किसने बनाया और कितना पर्पसफुल बनाया, कितना प्रिसाइज बनाया। आप कलर्स में ही देखें तो सुभान अल्लाह ऐसी खूबसूरती है कि ये किसने कलर स्कीम की। आपको ना बहुत कोई बड़े फिलोसोफर या बड़ी बड़ी फिलसफी बातें या बड़ी गहरी कोई दूर की निकाल निकाल के लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही आप कह लेना कि ये सब कुछ किसने पैदा किया, वाकई वो पैदा करने वाला एक, और उसकी तारीफ बयान करने इतना ही काफी है। अब ये नहीं कि हाँ जो हमें तो बातें आती नहीं है, पता नहीं कोई गहरी बात हम निकाल के लाएंगे ना तो फिर ही कोई मतलब हमने वाकई हक अदा की। ठीक है, जो कोई गहराई में जाना चाहे वो अपनी बात है, लेकिन हर एक बंदे को इतना नहीं इंटेलेक्ट होता कि वो कोई बहुत ही गहरी बातें कर सके। सिर्फ इतना भी देख के और उसको मान लेना कि अल्लाह तू ही वाकई इबादत के लायक है, मुझे तो तेरे ही आगे झुकना चाहिए। या अल्लाह जिस रब ने ये सब कुछ बनाया और मेरे लिए बनाया, तो फिर ये है तौहीद। तो असल मकसद है तौहीद तक पहुंचना इस सबसे। ये कायनात में जो निशानियां हैं ना, इनको अल्लाह ताला ने आयात का है, एक आयात कुरान की है, एक आयात जो है ये कायनात की है, इसीलिए ये आगे आ रहा है युफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून। उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, अल्लाह ताला अपनी आयात को खोल खोल के बयान करता है। एक आयात कुरान की हो गई, ठीक है, एक आयात ये कायनात में फैली हुई है, ये भी निशानियां अल्लाह की। इनसे भी इल्म वाले सीखते हैं, समझते हैं और जान लेते हैं कि इस कायनात का वाकई कोई मकसद है, ऐसे ही नहीं है ये। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون